कर्मकांड लेक्चर नंबर 5। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद जी ने इस भूमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। पंडित टोडरमल जी ने उसके ऊपर से भंडारी भाषा में संस्कृत टीका के अनुसार वो भाषा टीका ने भंडारी भाषा में उसकी रचना की थी, उसी का हम यहाँ हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 101 से अभी नया अधिकार चालू हो जाता है, उसका नाम है बंध उदय और सत्व अधिकार। कारमाण वर्गणा कर्म रूप होकर जीव के प्रदेशों के साथ कुछ काल तक बंधी हुई पाई जाती है, उसको बंध कहते हैं। बंधने के बाद जीव की साथ वो सत्ता में पड़े रहते हैं, उसको कहते हैं सत्व। और जब परमाणु फिर जाते हैं कर्म से अकर्म रूप हो जाते हैं तो उसको कहते हैं उसका उदय। इसकी अभी यहाँ चर्चा चलेगी। पहले अधिकार में तो हमने प्रकृतियों के नाम देखे, उसके अलग अलग पद्धति से विभाजन देख लिए। अभी ये दूसरा अधिकार अपना यहाँ से शुरू हो जाता है। मंगलाचरण में क्या कहते हैं उसको पढ़कर हम आगे देखते हैं। इसका अर्थ देखते हैं 87 गाथा का अर्थ, पृष्ठ संख्या 101। अहम अर्थात मैं ग्रंथकर्ता नेमिचंद, अर्थात यानी मैं किसको नमस्कार करता हूँ तो नेमिचंद भगवान को करता हूँ। नम्यून नेमिचंदम है ना, तो नेमिचंद कौन है तो नेमिनाथ नामक तीर्थंकर परम देव, उनको यहाँ चंद्रमा की उपमा दी है। वे ही हुए चंद्रमा, उनको नत्वा ने नमस्कार करके ओभादेश ओभ से और आदेश से कि ओभ किसको कहना और आदेश किसको कहना, हमने बहुत बार देखा था याद है। ओव यानी गुणस्थानों में जो कथन करते हैं उसको कहेंगे ओव से, आदेश से ऐसा मार्गणा में उसका कथन करते हैं। ये जो 14 मार्गणा है उसमें जो विशेषता होती है उसकी अपेक्षा जहाँ कौन सी प्रकृति बनती है तो एक सामान्य कथन होता है। चारों गतियाँ सभी जीवों की अपेक्षा से जो जहाँ जितनी प्रकृति बनती है मिथ्या तो में उसका कथन करेंगे। और मार्गणाओं की अपेक्षा जैसे नारियों में सभी प्रकृतियों तो नहीं बनेंगी, सभी उदय रूप नहीं होगी, जो एक नियम की उसकी यही होगी वो प्रकृतियां बंद उदय में होगी, तो उसको कहेंगे मार्गणाओं की अपेक्षा। ओग से यानी गुणस्थानों में और आदेश यानी मार्गणाओं में उसका अलग अलग कथन करेंगे। बंधोदय सर्वयुक्तम अर्थात कर्मों के बंध उदय सत्व का प्रतिपादक, प्रतिपादक यानी बताने वाला। स्तव स्तव कहूंगा यानी स्तव किसको कहना है, सकल अंगों संबंधी अर्थ जिसमें पाया जाता है, यानी सभी अंगों संबंधी उसका कुछ निचोड़ इसमें आ जाता है, ऐसे स्तवरूप ग्रंथ को वदिश्रेणी में कहूंगा। अब नेमिचंद के विशेषण बता दिए, ऊपर बताए ना असहाय परक्रम महावीर। महावीर ने बंधने वालों के समूह को मनवांछित अर्थ के दाता है। और कैसे है असहाय पराक्रम, उनका पराक्रम कैसा है असहाय। हम असहाय किसको कहते हैं, गरीब बेचारा असहाय, वो असहाय नहीं है। हाँ अन्य किसी सहाय की उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो कर्म वैरी के जीतने में जिसके अन्य कोई सहाय नहीं है, इन्हें स्वयं ही अपने में स्वयं पूर्ण है, ऐसा जो रत्नत्रय स्वरूप निज भावना की सामर्थ्य रूप पराक्रम। कैसा पराक्रम है? निज भावना कहो, ज्ञान भावना कहो, आत्म भावना कहो, बात एक ही है। आत्मा में एकाग्रता कहो, अपना स्वरूप जानकर उसी में रमणता करो, बात एक ही है। उसी को समाधि कहेंगे, उसी को आत्म भावना कहेंगे, उसी को निज भावना कहेंगे, उसी को ज्ञान भावना कहेंगे। करने योग्य कार्य तो यही है और यही पराक्रम है। इस पराक्रम से जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीता है, ऐसे असहाय पराक्रमी, ऐसे जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का नाम लिया है, सिद्धांत चक्रवर्ती ने नेमिचंद तीर्थंकरों का नाम लिया है, उनको नमस्कार करके यहाँ लिखा है ना, ऐसे असहाय पराक्रम जिनके पाया जाता है, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर परम देव को नमस्कार करके बंध उदय और सत्ता के प्रतिपादक स्तव को मैं कहूंगा। अब स्तव क्या है उसका और आगे की गाथा में विशेष रूप से बताते हैं। पेज नंबर 102 पर आना। सकल अंगों संबंधी अर्थ, ये सकल अंग समझते हैं, बारह अंग, द्वादश अंग हो, बारह अंग का हो, द्वादश का ही अर्थ होते बारह ना, क्योंकि आजकल क्या है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं तो ये द्वादशांक क्या होता है, बारह अंक क्या है, इसे भी हम प्रश्न पूछने वाले नहीं थे। द्वादश है बारह, तो ये हाँ बारह अंगों में जो रचना हुई है, तो सकल अंगों संबंधी अर्थ विस्तार सहित या संक्षेप सहित जिसमें पाया जाता है, ऐसे शास्त्र को स्तव कहते हैं, यानी सभी अंगों का इसमें निचोड़ा जाता है। और एक संबंधी अर्थ विस्तार सहित या संक्षेप सहित जिसमें पाया जाता है, ऐसे शास्त्र को स्तुति कहते हैं। एक अंग के अधिकार संबंधी अर्थ विस्तार सहित या संक्षेप सहित पाया जाता है, ऐसे शास्त्र को वस्तु कहते हैं। यानी एक अंग के एक अधिकार का भी अर्थ लेना है। प्रथमान योगादि रूप शास्त्र को नियम से धर्म कथा कहते हैं। और यहाँ क्या है, हमारा विषय क्या है, बंध उदय और सत्ता संबंधी। सत्ता रूप कर्म के कथन में सकल अंगों संबंधी अर्थ विस्तार सहित व संक्षेप सहित कहेंगे, इसलिए स्तव कहते हैं। यानी कहीं उसका संक्षेप से वर्णन करेंगे, कहीं विस्तार से भी इसका वर्णन चलेगा। ये कर्मों के जो बंध के संबंध में कुछ नियम भी कहेंगे, कहाँ कौन सी प्रकृतियां बनती है, कौन से जीवों को कौन सी प्रकृतियां बनती, इस तरह नियम यहाँ बता देंगे। वहां प्रथम ही बंध का कथन करते हैं, वहां बंध के भेदों को कहते हैं। हम जब कहते हैं जीव ने कर्म बांधे, तो ये कर्म का बंध होता है, तो उसको चार प्रकार से कहने में आता है। हमने बहुत बार पढ़ा है ये विषय, कौन से चार प्रकार है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अवस्था। प्रकृतियों का बनना उसको प्रकृति बंध कहते हैं। जो हमने प्रकृतियों के नाम देखे, ज्ञान वर्ण आदि जो मूल प्रकृति है, इसको कहें मूल प्रकृतियों का बंध। और उसमें जो अलग अलग जो उत्तर प्रकृतियां बनती है, उसको उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा प्रकृति बंध कहते हैं। ये हुआ प्रकृति बंध। प्रदेश बंध का अर्थ क्या है, हमने देखा था एक समय में जीव जितने परमाणुओं को, कारमाण वर्गणाओं को कर्मरूप परिणमाता है, हमारी भाषा में नंबर ऑफ परमाणु जितना ग्रहण करता है कर्म के, उसको क्या कहेंगे, समय प्रबद्ध। और वो जितने नंबर में होते हैं उसको क्या कहेंगे, प्रदेश बंध। यहाँ प्रदेश का अर्थ एक परमाणु को, यहाँ प्रदेश का, प्रदेश बंध का अर्थ आत्मा के प्रदेश के बनता है, ऐसा उसका अर्थ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे ही आत्मा के प्रदेशों से उनका बंध हो रहा है, परंतु उसमें तो चारों ही है। तो प्रदेश बंध का अर्थ है नंबर ऑफ परमाणु बंधने वाले, एक समय में बंधने वाले जो परमाणु की संख्या है उसको कहेंगे प्रदेश बंध। दो बातें ख्याल में आई, कौन सी, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। और दो नाम यहां भी लिखे बोर्ड पर, क्या लिखा है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो जिस समय कर्म बंधे उसी समय यह नक्की हुआ कि वो पर्टिकुलर जो विवक्षित कर्म है कितने काल तक जीव के साथ पड़ा रहेगा, यानी इतने काल के बाद उसका उदय होगा, उसको क्या कहेंगे, स्थिति बंध। हमारी भाषा ड्यूरेशन, हमारी भाषा में हम कहेंगे ड्यूरेशन, कितने काल तक वो जीव के साथ बंधा पड़ेगा, एक समय में बंधा हो, वो किस रूप से पड़ा रहता है उसकी चर्चा करेंगे अभी। बंधा हुआ कर्म किस पद्धति से पड़ा रहता है, उसमें क्या अभिषेक रचना वगैरह होती है, उसकी बात हम करेंगे। परंतु जितने काल तक उसका अंतिम लौट रहेगा उसको क्या कहेंगे, स्थिति बंध। और एक होता है अनुभाग बंध, जो परमाणु बंधे हैं उसमें फलदान शक्ति कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, किस रूप में कितना फल देंगे, थोड़ा सा माइल्ड होगा क्या, बहुत सारा फल होगा, इसको क्या कहेंगे, अनुभाग बंध। तो चार हमने नाम कौन से देखे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग। ये चार बातें होगी नहीं। तो ये प्रकृति बंध और प्रदेश बंध कौन नक्की करता है, तो कहते योग से वो नक्की, जितना योग ज्यादा उतने प्रदेश नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा। यहाँ योग से मतलब भाव योग की बात है, क्योंकि कर्म और नौकर्म को आकर्षण करने की शक्ति उसको भाव योग कहते हैं। और वो है, हमने देखा था ना, कल पढ़ा था, सुबह पढ़ा था, शरीर नाम कर्म के हृदय में होती है। क्या पढ़ा था हमने, औदारिक वैग्रहिक आहारक वगैरह जो है ना। और अभी हम कर्म की बात कर रहे हैं, तो कर्म में कौन से शरीर नाम कर्म का उदय निमित्त होगा, कारमान शरीर नाम कर्म, कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में जीव में जो योग होता है उसके कारण नंबर ऑफ कर्म परमाणु, कर्म परमाणु जो कारमान वगैरह के पार्टिकल से उसको ग्रहण करता है, उसको क्या कहेंगे, प्रदेश बंध। जितना योग ज्यादा उतने प्रदेश बंधन बढ़ते हैं, वो अधिक उत्कृष्ट की वजह। प्रकृति में तो शुभ योग या अशुभ योग उसको निमित्त कहने में आते हैं। वैसे योग में चंचलता में शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, परंतु उस समय के जो जीव के जो कुछ क्रिया है या उसके जो कुछ भाव है उस पर योग पर आरोप करके शुभ अशुभ उसको नाम दिया जाता है। इन्हें कौन सी प्रकृति बंधेगी और कितने नंबर ऑफ परमाणु बंधेंगे, ये योग से निश्चित होता है। स्थिति और अनुभाग कहे से निश्चित होता है, कषाय से। उन कषाय कहने से किसको लेना, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय, सबको मिलकर एक कषाय नाम है। नहीं तो अकेले कषाय से स्थिति बंद होता है, मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता, ऐसा अगर अगर मानेंगे तो वो बात गलत है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, क्योंकि बंद के हेतु कितने हैं, तो पांच है। कौन से, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाण कषाय योग। तो उसमें से योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है और बाकी सब एक में आ गए। ये सबको मिलकर एक नाम है कषाय। क्यों, इनमें से लास्ट जाने वाला है वो कषाय। कषाय तो दसवें गुण स्थान तक है, इसलिए उसका नाम लिया है यहाँ पर। उसमें ये सभी गर्भित है, इसके कारण क्या होता है, स्थिति कितनी बंधेगी, अधिक बंधेगी या कम बंधेगी। जहां तीव्र कषाय है वहां स्थिति ज्यादा बंधेगी, जहां मंद कषाय है वहां स्थिति छोटी बंधेगी। इसमें हमने अपवाद देखे थे, हाँ, तीन आयु, देवायु, मनुष्यायु और नरकायु। तो संकेत है नरकायु बंधेगी, और नरकायु बनते समय थोड़े परिणाम थोड़े मंद होंगे, तो छोटी आयु बंधेगी नरक संबंध नहीं समझे। नरकायु के बारे में क्या है, जो नियम अन्य प्रकृतियों के लिए है, जहां संकलेश ज्यादा है वहां स्थिति ज्यादा बनती है। तो नरकायु की स्थिति अधिक किसके बंधेगी, जिसके संकलेश ज्यादा है उसके बंधेगी, क्या कम है उसके बंधेगी, ज्यादा। जैसे श्रेणी के राजा को बंधी थी ना, वो सातवें नरक की 33 सागर की आयु का बंध हुआ था, तो उस समय उनके संकलेश परिणाम तीव्र संकलेश परिणाम थे कि नहीं, तीव्र कषाय थे, तीव्र संकलेश परिणाम थे, उस समय उनकी लंबी आयु बनी। ऐसे ही अन्य सभी कर्मों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा, संगी पंचेन्द्रिय मिथ्या दृष्टि संकलेश परिणाम है वो। बाकी कंडीशन हम बताएंगे आपको, पर्याप्त ज्ञान वगैरह वो सभी कंडीशन लागू हो जाएगी। वो स्थिति बंध के प्रकरण में हमको उसको विस्तार से देखना, तो हमें ये देखना है कि ये जो हमने भेद देखे कौन से, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। अनुभाग है फल देने की शक्ति। स्थिति बंध में स्थिति में प्रशस्त प्रकृति हो या अप्रशस्त प्रकृति हो, पुण्य प्रकृति हो या पाप प्रकृति हो, जहां संकलेश ज्यादा वहां स्थिति ज्यादा। अनुभव बंद की जब बात आती है तो हमको सोचना है कौन से प्रकृतियों की बात कर रहे हो, क्योंकि प्रशस्त कर्मों का अनुभव अधिक कब बनेगा, जब विशुद्धि ज्यादा है। नहीं समझ में आ गई? जैसे सातावेदने का अनुभव किसको उत्कृष्ट बनेगा, दसवीं गुणस्तम के लास्ट में जाएगी, और असत का ज्यादा अनुभव किसको बनेगा, मिथ्या दृष्टि को बनेगा जब वो अधिक संकलेश कर रहा है। यानी प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव ज्यादा कब बनेगा, जब विशुद्धि ज्यादा है, और प्रशस्त कर्मों का अनुभव अधिक कब बनेगा, वो मिथ्या दृष्टि होगा, संकलेश होगा, वो बाकी सब उससे कंडीशन लगा लेना उसमें। अब कौन से पर्याय वालों को कैसे कैसे बंधक होते हैं उसकी चर्चा आएगी। अभी तो हम यहाँ तो स्थूल रूप से चर्चा कर रहे हैं, जाके एक एक की विस्तार से चर्चा हो। तो ये चार प्रकार के बंध देखे, उसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है, और स्थिति बंध और अनुभव बंध कषाय से है। ये तो इन जनरल स्टेटमेंट यहाँ हमने देखे। अनुभव बंध में वो पुण्य प्रकृति है क्या पाप प्रकृति, इसका विचार करना है। स्थिति बंध में तो डायरेक्ट हम ज्यादा लंबी स्थिति बनती है तो संकलेश से बनती है, ऐसा हम डायरेक्ट कह सकते। यहाँ तक कोई प्रश्न है इसके बारे में? हाँ, आपका ये प्रश्न है, संकलेश ज्यादा है तो योग ज्यादा होगा, ऐसा हो सकता है ना? नहीं होता। तीर्थंकर को भी उत्कृष्ट योग हो सकता है, अरिहंतों को भी, तीर्थंकर में अरिहंतों को भी उत्कृष्ट, यानी जो संगी पंचेंद्रिय है उसके योग्य उत्कृष्ट योग, उत्कृष्ट योग जिसको कहेंगे, किसी को भी होगा, मिथ्या दृष्टि को होगा या सम्य दृष्टि को होगा या भगवान को भी सहयोग वाले को। हाँ, यानी वो योग जो है वो कषाय से, यानी उससे वो कंट्रोल नहीं है।
एक ही चीज समझ में आया कि जब ज्यादा आपने जो ज्यादा संकलेश तो ज्यादा लंबा ड्यूरेशन बनता है, तो जो सर्वा सिद्धि के देव है तो 33 सागर तक वहाँ पे सुख होना है, पर संकलेश बहुत कम है, और फिर स्थिति 33 सागर की उधर की बन रही है और संकलेश परिणाम से
वो बन नहीं रही है। देखो देखो, हमने उसमें ये जो हमने आपको जो रूल बताया था उसमें अपवाद करके तीन आयु की बात कर रहे थे। हाँ, समझ नहीं पा। नरकायु 33 सागर की बंधी तो तीव्र संकलेश से बंधी, पर देवायु 33 सागर की कौन बांधते हैं, तो मुनिराज बांधते हैं, तो मुनिराज बांधते तो कृष्ण शुक्ल दशा में उन्होंने वहां की आयु बांधी है, तो वो तो शुभ परिणाम में नहीं विशुद्ध परिणाम में ही बांधी है, यथा योग्य आयु के बंध के योग्य विशुद्ध करेंगे। समझ में आई बात? और वहां जो वे बंध करेंगे वो बात अलग है, वो देव के योग्य जो बंध करेंगे वो चौथे गुण स्थान वाले। आयु के तीन आयु की बात हमने उसमें से अपवाद रूप से कम कर दी थी। आगे बढ़े अभी, क्योंकि जो जो विषय उसके संबंधी प्रश्न है तो हम आगे से आपको बोलेंगे कि आपका प्रश्न है क्या नहीं है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमने देखो, यहां से पढ़ते हैं पेज नंबर 102, ये जो 89 की टीका है ना, वहां से पढ़ेंगे। बंध चार प्रकार का है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। वहां यथा योग्य मूल प्रकृतियों तथा उत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ संबंध होना प्रकृति बंध है। एक जीव के एट ए टाइम तो सभी प्रकृतियां नहीं बनती हैं, परंतु यहां जब हम बंध की बात करेंगे दो अपेक्षाओं से बात करेंगे, किसी गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बनती है, कितने उदय रूप है, कितनी सत्ता रूप है, तो वहां दो अपेक्षा आती है, एक तो एक जीव की अपेक्षा और एक बात आते हैं नाना जीव की अपेक्षा, नाना ने अनेक जीव की अपेक्षा। कोई ना कोई जीव उसका बंध करेगा तो सबको इंक्लूड करेंगे, मिथ्या दृष्टि जीव इतने कर्मों का बंध कर रहा है। और जब एक जीव की बात आएगी तो वहां बताई जाएगी कि एक जीव एट ए टाइम कितनी प्रकृतियों का बंध कर सकता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव कौन सी गति बांध सकता है, हमने आपको बताया था चारों गति, तो नाना जीवों की अपेक्षा चारों गति का बंध होगा, पर एक जीव एट ए टाइम एक ही गति बांधेगा, एक समय में चारों गति का बंध नहीं होता है, ये डिफरेंस होगा उसमें। तो यहां कह रहे हैं उत्तर प्रकृतियों की भी बात आएंगी, कितनी उत्तर प्रकृतियां है, वो कौन सी एट ए टाइम बन सकती है, उसकी चर्चा होगी। उन प्रकृतियों के जीव के साथ संबंध रूप रहने के काल का जो प्रमाण है वह स्थिति बंध है, यानी इतने काल तक वो पर्टिकुलर उस समय बंधा हुआ कर्म जीव के साथ वो पड़ा रहे हवा पर बंधा हुआ। उन प्रकृतियों में फल देने की जो शक्ति है वह अनुभाग बंध है, बंधा तब इतना अनुभाग वहां नक्की हुआ। ये बंधने के बाद सत्ता में पड़े हुए उसमें बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है, स्थिति भी कट डाउन हो सकती है, जो कुछ यथायोग्य कहां तक उसका उत्कर्षण वगैरह होता है उसके नियम जुड़े। यहां तो बंधने के समय क्या पोजीशन है उसकी बात चल रही है। अब उन प्रकृति रूप परिणमित उद्गल परमाणुओं का जो प्रमाण वह प्रदेश बंध है, कितने परमाणु एट ए टाइम उस कर्म रूप परिणमित हुए है उसको कहेंगे प्रदेश बंध। पुनश्च पृथक कहने पर एक एक बंध चार प्रकार का है। अभी ये जो कुछ बातें हैं उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अपनी भाषा में समझेंगे, पर इसको बार बार यानी अभी प्रकृति बंध का अलग से प्रकरण होगा, स्थिति बंध का अलग से करेंगे, प्रदेश बंध का वगैरह वगैरह, और बारंबार हम ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वगैरह की बात आपने बताई थी ना, इसको समझ में जरा कठिन पड़ता है, इसलिए उस पर थोड़ा अधिक विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हर स्थिति बंध के प्रकरण में फिर इसको लेकर हम उसकी चर्चा करेंगे, अभी तो मुख्य रूप से बताएंगे ही बताएंगे। जब स्थिति बंध का प्रकरण आएगा, अनुभाग बंध का प्रकरण आएगा, तो फिर इसको रेफर करेंगे। तो कहते हैं वो बंध भी चार चार प्रकार का है, उसके नाम क्या, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य और जघन्य। देखो इसका अर्थ देखते हैं, उत्कृष्ट का अर्थ क्या है, मैक्सिमम। स्थिति के बारे में उत्कृष्ट क्या कहेंगे, जो उत्कृष्ट स्थिति बांधता है तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट स्थिति बंध हुआ, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा क्या कहलाएगा, अनुत्कृष्ट। यानी एट ए टाइम चार वेद नहीं करना, अभी हम कहेंगे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य, परंतु जब उत्कृष्ट की बात करेंगे तो उसके सामने केवल अनुत्कृष्ट को रखना, यानी जो उत्कृष्ट बंध नहीं है वो सारा अनुत्कृष्ट, यानी जघन्य को भी क्या कहेंगे हम, अनुत्कृष्ट कहेंगे। उत्कृष्ट के सामने केवल अनुत्कृष्ट रखना, और जहां हम जघन्य की बात करेंगे वहां अजघन्य कहना। एक बार चारों वेद नहीं करना, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट, जघन्य या अजघन्य, क्योंकि जो उत्कृष्ट बंध होगा उसको हम अजघन्य, जघन्य के सामने उसको अजघन्य कह देंगे। ख्याल में आती है बात, ये ख्याल में रखना, जो उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं है वो सारा क्या कहलाएगा, अनुत्कृष्ट। जैसे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध सबको मालूम है कितना होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, बहुत बार सुना है ना। तो जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है वो सारा क्या कहलाएगा,
अनुत्कृष्ट।
जघन्य भी उसमें आ गया, तो मिथ्यात्व का जघन्य बंध कितना होगा, बोलो क्या मिस्टिंग बच्चे देवला भी चल रही है, बोलो कहाँ गए हमारे, एक सागर माइनस पल्ले का असंख्या तो भाग, एक इंद्रिया संगीत पंचेंद्रिय की अपेक्षा हम अंतकोड़ा बोलते, समझ नहीं पा। तो जो जघन्य नहीं वो सारा क्या कहलाएगा, अजघन्य।
उसको मध्यम नहीं कर सकते,
किसको नहीं मध्यम नहीं कहेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट के हमने दो ही भाग एट ए टाइम दो ही भेद करना है, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट, जघन्य या अजघन्य, मध्यम उसको कहेंगे कैसे, क्योंकि जो अनुत्कृष्ट है वो जघन्य भी हो सकता है, उसको मध्यम नाम नहीं दे सकते, और जो अजघन्य है वो उत्कृष्ट भी हो सकता है, उसको मध्यम नाम नहीं दे सकते। ये पद्धति जो है ना महादवला में निकाल के देखना, यही पद्धति है उसमें, उत्कृष्ट के सामने अनुत्कृष्ट रखा है और जघन्य के सामने अजघन्य रखा है। एट ए टाइम चार वेद करने जाओ तो ये बैठता नहीं है, आप जो आगे कहेंगे ना, आगे जो हम सीखेंगे साध्या नदी, वो उसमें बैठ नहीं सकता। जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा क्या है, अनुत्कृष्ट, और जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य। तो एक एक के चार चार प्रकार, अभी एक एक में भी प्रकृति बंध, यहाँ तो क्या कहा है, प्रकृति बंध में ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं लगती है, सब यहाँ एक वाक्य है 104 नंबर के पृष्ठ पर। ये जो पहला पैराग्राफ है नीचे से तीसरी लाइन, प्रकृति बंध में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजगन्य जगन्य भेद नहीं है, लिखा है ना। परंतु यहाँ महाबंध में, महाबंध में महाधवला नाम के जो शास्त्र है उसमें प्रकृति बंध में भी घटित कैसे बने, मूल प्रकृतियां एट ए टाइम कितने नंबर ऑफ प्रकृतियां बनती है, 8 बन सकती है कि नहीं बन सकती, जब आयु बन रही है तो 8 बनती है, तो 8 मूल प्रकृतियों का बंध है, उसी को वहां उत्कृष्ट कहा। और जहां आयु नहीं बनती है तो 7 बंधेगी उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, और 10वें पुनस्थान में 6 बंधेगी उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। समझ में, वेद ने अकेला 1 बनता है 11वें 12वें में उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। अब जगन्य कहना है तो क्या कहेंगे, एक ही बंधेगी या एक का कहीं कहीं उसको गौण करके नहीं के बराबर, उसकी चर्चा भी नहीं करते 10वें स्थान के बाद, तो हमें जहाँ 6 बनती है तो मिनिमम बंधेगी उसको जगन्य कहेंगे, और 8 बंधेगी तो उसको अजगन्य कहेंगे। वहां पर इस तरह से घटित किया है, उत्तर प्रकृतियों में भी ऐसा ही घटित करते। अब ज्ञानावरण की कितनी बनती है प्रकृतियां, तो कहते पहले गुण स्थान से लेकर 10वें तक 5 ही बनती है, उसी को उत्कृष्ट कहेंगे, तो उसका कोई अनुत्कृष्ट बंधन नहीं कहेंगे, ख्याल में आई ना बात, उसके लिए कोई जगन्य नहीं कहेंगे, अजगन्य ही है ऐसा कहेंगे, ये अपेक्षा जगन्य की अपेक्षा उसको अजगन्य कहेंगे, क्योंकि उसमें एक ही बनती है दो ही बनते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, ज्ञानावरण की 5 के 5 बनेगी। अब दर्शनावरण की बात करेंगे, ये अभी आपका विषय नहीं हुआ है, हम जाएंगे अभी बंध विच्छित्ति वगैरह कहाँ क्या होती है। मिथ्या तो गुण स्थान में पहले और दूसरे गुण स्थान में दर्शनावरण के 9 के 9 बनती है, सब जीवों प्रति समय, समय दृष्टि हो जाएगा तो उसकी वो 3 निद्रा वो नहीं बंधेगी, उसकी 6 कर्मों का बंध होगा दर्शनावरण का। 8वें गुण स्थान में निद्रा प्रसला बंधने रुक जाएगी तो ऊपर उसका 4 का ही बंध होगा 10वें गुण स्थान, यानी जहां 9 का बंध है तो उसको उत्कृष्ट कहेंगे, 6 का और 4 का है उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। जगन्य अजगन्य की अपेक्षा बताना है, जहां 4 प्रकृतियां बंध रही है उसको हम जगन्य बंध कहेंगे, प्रकृति। ये इस अभी हमारा ये विषय नहीं हुआ कि कौन से कितनी प्रकृति बनती, वो हम देखेंगे अभी आगे जाके हर एक कर्म की कौन से गुण। इसके लिए थोड़ा गुणस्थानों का नाम तो मालूम होने चाहिए या नंबरिंग तो मालूम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ऐसी बातें चलेगी कौन से गुणस्थान में कितनी बनती है, कौन सी बनती है, क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, हम धीरे से चलेंगे इस पर। ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और सादी अनादि क्या होता है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। ये पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। एक एक बंध 4-4 प्रकार का है, एक एक यानी प्रकृति बंध में भी हम 4 प्रकार लगाएंगे जो हमने अभी आपको डिराइव करके बताया, किसी अपेक्षा उसको भी लगा सकते हैं। फिर प्रदेश बंध में तो हम कह नहीं सकते, जहां उत्कृष्ट योग है उसके उत्कृष्ट प्रदेश बंध भी होगा, जहां उत्कृष्ट योग नहीं है उसको अनुत्कृष्ट योग है तो उसको प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट होगा, जहां जगन्य योग है वहां प्रदेश बंध भी जगन्य होगा। जैसे सूक्ष्म निबोध लब्धि पर्याप्त के भोग के पहले समय में मिनिमम योग है वहां पर। अब योग के प्रकार हमने नहीं देखे, उसकी जब चर्चा करेंगे तो वहां मिनिमम क्यों है उसकी चर्चा भी आ जाएगी। कुछ तो बातें आपको पहले सुनना है, उसका एक्सप्लेनेशन यथा समय आ जाएगा, क्योंकि सारा विषय नया है ना अपने लिए। अभी तो हम आपको केवल इंट्रोडक्टरी कुछ बातें बताएं, इससे एक एक का बिल्कुल विस्तार से यहाँ चर्चा चलेगी। तो जहां योग जघन्य है वहां प्रदेश बंध भी जघन्य, और जो जघन्य नहीं वो सारा क्या कहलाएगा, अजघन्य। जो उत्कृष्ट नहीं है वो सारा अनुत्कृष्ट, इसलिए प्रदेश बंध में लगाना। स्थिति बंध में तो बताया भी, स्थिति भी उत्कृष्ट होगी या अनुत्कृष्ट, जघन्य होगी या अजघन्य, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति कौन सी, कौन से पर्याय वालों को कितनी होती है इसकी भी जरूरत हमें मालूम होनी चाहिए, वो कहेंगे यहां पर भी। उसके बाद क्या हो गया अनुभाग बंध। तो अनुभाग बंध उत्कृष्ट कहाँ होगा, ऊपर के गुणस्थानों में होगा कि नीचे के गुणस्थानों में होगा? हाँ, अभी प्रकृति कौन सी है पहले नक्की करो, क्योंकि जो प्रशस्त प्रकृतियां है उनका उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ हुआ, ऊपर यानी कहाँ, दसवें गुणस्थान, क्योंकि दसवें तक ही स्थिति और अनुभाग का बंध है। क्या कहा मैंने, क्यों ग्यारहवें बारहवें तेरहवें वाले को बंध नहीं है क्या? बंध है, साता वेदनी एक ही प्रकृति बनती है और वो एक समय में बनती और उदय रूप होते हुए ही चली जाती है, रुकती नहीं, उसको ईर्ष्यापद आश्रय या बंध कहते हैं। ईर्ष्यापद बंध भी कहते हैं, ईर्ष्यापद आश्रय भी कहते हैं, यानी वो उसमें ना स्थिति बनती है ना अनुभाग बनता है, स्थिति और अनुभाग दसवें तक ही बनता है। तो जहाँ प्रशस्त प्रकृति यशस कीर्ति बन रही है, साता वेदनी बन रही है, उच्च गोत्र बन रहा है, उसका उत्कृष्ट अनुभव कहाँ होगा, दसवें के अंत में। मिथ्यात्व का ज्ञानावरण दर्शनावरण का उत्कृष्ट अनुभव कहाँ बंधेगा, मिथ्या दृष्टि को बंधेगा, संकलेश वाले को बंधेगा, वहां योग की कंडीशन नहीं लगाना, वहां तीव्र कषाय की संकलेश कहते हैं उसको, संकलेश तीव्र कषाय को कहेंगे, विशुद्धि मंद कषाय को कहेंगे। मिथ्या दृष्टि जहां तीव्र कषाय है उसके वो अनुभाग भी तीव्र बंधेगा, किसका, अप्रशस्त कर्मों का, जैसे सारे घाती कर्म है और भी सारे जो अन्य अप्रशस्त कर्म है उनका तीव्र अनुभाग किसको बंधेगा, मिथ्या दृष्टि को बंधेगा। ये ख्याल में है, ये तो सामान्य स्थूल अपेक्षा से यहां बात चल रही है। हाँ देखो ये पैराग्राफ पूरा करते हैं, एक एक बंध चार प्रकार का है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, इसका अर्थ समझ में आ रहा है ना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, एक एक बंध यानी कौन से, एक एक बंध प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, एक एक में चारों लगाना, उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी, जगन्य भी और अजगन्य भी, वहां सबसे अधिक हो उसको उत्कृष्ट कहते हैं, स्थिति में स्थिति की बात करना, प्रदेश में प्रदेश की बात करना, अनुभाग में अनुभाग की बात करना, तथा उत्कृष्ट से जो हीन है उसे अनुत्कृष्ट कहते हैं, पुनः जगन्य से जो अधिक है उसे अजगन्य कहते हैं, और सबसे थोड़ा हो उसे जगन्य कहते हैं। यानी दो दो ही भेद करना, एट ए टाइम दो ही भेद करना, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट, जगन्य या अजगन्य। अभी जो हमने अभी तो कौन से भेद देखे, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट, जघन्य या अजघन्य, अब ये उत्कृष्ट में भी और चार भेद करेंगे। देखो यहाँ ऊपर क्या बताया, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, यहाँ प्रकृति बंध उत्कृष्ट आदि नहीं होते, ये यहाँ का कर्मकांड का वचन है, परंतु महाबंध में भूतबली आचार्य ने वो इसके भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य भेद हमने भी आपको बताया ना, मूल प्रकृतियों में उत्तर प्रकृति नंबर ऑफ प्रकृति कितनी बनती है उसके अनुसार उसका उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नाम दिए। तो इसके कौन कौन से, हर एक के एक एक के कितने भेद है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य और जघन्य, एट ए टाइम ये भेद नहीं करना, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट करना, जघन्य या अजघन्य करना, ये चार चार भेद अभी हमने इसमें देखे। अब उस एक एक में और चार चार भेद करेंगे, जैसा एकमात्र दिया उत्कृष्ट भेद, तो जो उत्कृष्ट मान लेते उत्कृष्ट प्रदेश बंध, उत्कृष्ट प्रदेश बंध किसको होगा, जो उत्कृष्ट योग वाले को होगा, संगीत पंचेंद्रिय को होगा, पर्याप्त होना, जो बाकी जो कंडीशन वो हम आपको बताएंगे। तो ये उत्कृष्ट प्रदेश बंध, अभी इसमें कौन सी चार बातें लगाना है, हरेक में वो आदि है क्या, अनादि है क्या, ध्रुव है क्या, अध्रुव है। अब यहां पर भी आदि या अनादि ऐसा देखना, सादि किसको कहेंगे और अनादि किसको कहेंगे, स प्लस आदि उसको कहेंगे सादि, यानी पहले नहीं था और बाद में हुआ उसको कहेंगे सादि, और अनादि किसको कहेंगे, अनादि से जो हो रहा है उसको कहेंगे अनादि। प्रकृति बंध में उन्होंने तो उत्कृष्ट आदि भेद नहीं लिए, परंतु प्रकृति बंध में ये चार भेद तो लगाएंगे, कोई प्रकृति ऐसी कि अनादि से बन रही है, कौन सी ऐसी प्रकृति आपको मालूम है जो अनादि से बन रही है, मिथ्यात्व, जब तक उसकी विच्छित्ति नहीं होती, जब तक संवेदन नहीं हो रहा है तो मिथ्या तो अनादि से बन रहा है, तो मिथ्या तो प्रकृति अनादि से है ना, तो उसमें अनादि बंध कहेंगे। तो मिथ्या तो प्रकृति में शादी बंध हो सकता है कि नहीं सकता? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाँ, समय सृष्टि हुआ तो मिथ्यात्व का बंध रुक गया था, फिर मिथ्यात्व में आया तो बंध शुरू हुआ, तो उसको कहेंगे शादी बंध। प्रकृति में घटित कर रहा था, यहाँ तो मूल प्रकृतियों में घटित करे, उत्तर प्रकृतियों में बात करेंगे हम बाद में। देखो आयु कब बनती है? कभी कभी। अनादि से क्या हर समय आयु बन रही थी? तो उसको कैसा बंध कहेंगे? शादी। ध्रुव है ना, लगातार बनता ही रहना, उसको कहेंगे ध्रुव। तो क्या ये वो ध्रुव है आयु का बंध? नहीं। तो कैसा है आयु का बंधन? शादी है और अध्रुव है। देखो इसको कैसे सोचना, रीरा है कैसे करना, इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं है, बस विचार करके उसका उत्तर निकालना है। हमें तो उत्तर सामने है, फिर उसके ऊपर हमको विचार करना है। उत्तर तो हमें मालूम है, पुस्तक में लिखा है, यहाँ हमको बता दिया है कि आयु का एक और चार है शादी और अध्रुव बंध है। यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं थी इसलिए नंबरिंग डाली, हमारी पुस्तक में उसका चार बताएंगे आप। आयु का बंध कैसा है? शादी और अध्रुव, इसलिए एक और चार लिखा होता है। ये जो नंबरिंग जो दिए है वो शादी के लिए एक लिखा है, अनादि के लिए दो लिखा है, ध्रुव बंध है ना जो बनता ही रहे उसको, कायम बंध रहे उसको ध्रुव कहा है, और बंध बंध रुक भी जाए तो उसको अध्रुव कहेंगे। जैसे अभव्यों में कितने ध्रुव बंध कहेंगे कुछ प्रकृतियों के, और भव्यों में उसके बंध रुक जाता है तो उसको अध्रुव भी कहेंगे। वो हम पुस्तक क्या, पहले हम अपनी भाषा में समझेंगे फिर यहाँ से पढ़ेंगे। देखना अब ये वेदनीय जो है साता हो या असाता, आपको मालूम है कितने काल तक बंधेंगे वेदनीय? अभी उसमें उसके भेद मत करो क्योंकि हम मूल प्रकृति की अपेक्षा बताए। आप नहीं समझे मेरा प्रश्न? वेदनी इन जनरल, उसके भेद किए बिना वो अनादि का बंधन है कि शादी का है? अनादि का। ऐसा कभी हुआ कि उसका बंधन रुक गया फिर वापस चालू हो गया? क्योंकि क्षपक श्रेणी में भी चढ़ गया मान लेते हैं, आगे अंत की अवस्था हो गई तो बंदर रुक जाता। उपक्षम श्रेणी में क्या हुआ वापस आते समय? ग्यारहवें में भी बन रही है वेदनी जनरल, उसका साता साता भेद मत करो। तो उपक्षम श्रेणी में ग्यारहवें में भी वेदनीय बंध रहा था, उल्टा नीचे आया दसवें में फिर भी बंध तो है ही है, तो उसका बंध कैसा है? अनादि, वेदनीय अनादि का बंध रहा। और कैसा है? ध्रुव। और कैसा है? अध्रुव। अध्रुव क्यों? क्योंकि जो संयोग केवल अयोग हो जाएंगे उनका बंध रुकेगा कि नहीं रुकेगा? नहीं समझे? संयोग केवल तक उसका बंध था वेदनीय का, अब वो जीव अयोगी हो गए सिद्ध हो गए तो उनका बंध कैसा रहेगा? अभी अध्रुव हो गया ना, हाँ उस अपेक्षा, इसलिए उसको ध्रुव भी कहा और अध्रुव भी कहा। ये मूल प्रकृतियों में भी हम घटित करें, उत्तर प्रकृतियों की बात अलग होगी। कुछ समझते हैं शादी अनादि क्या होता है? अभी तो हम मूल प्रकृतियों में ही घटित करते, बाद में हम उत्तर प्रकृतियों की बात करेंगे। शेष यानी कौन कौन से? आयु और वेदनीय छोड़कर कौन से रह गए? ज्ञानावर और दर्शनावर, मोहिनी, अंतराय, नाम, गोत्र, उनमें क्या क्या है? शादी बंधन है कि नहीं है? कैसा है घटित करो? हाँ बोलो, ये छह कर्मों का शादी बंधन है कि नहीं है? अनादि से बंध नहीं हो रहा था, रुक गया, यानी अनादि से बंध था उसको अनादि कहेंगे, क्योंकि उसमें चारों में एक दो तीन चार सब घटित किए, अनादि का है वो तो हम समझ सकते हैं क्योंकि मूल प्रकृति है। हमने देखा ना सात कर्म तो बंध ही रहे तो अनादि से तो बंध रहे, उसको शादी कब कहेंगे? बहुत अच्छा, दसवें गुणस्थान तक बनते थे, ग्यारहवें में गया तो अकेला वेदनीय बन गया, बाकी का बंद रुक गया था, वेदनी का बंद हो रहा था, इसलिए उसको हमको हमने ध्रुव में रख दिया था, उसको साधी में नहीं लिया था। परंतु उष्म श्रेणी चढ़कर उतरने वाले के ग्यारहवें गुणस्थान में इनका बंधन नहीं था, दसवें में आने पर उनका बंधन शुरू हुआ, तो वहां इनका बंधन साधी है। ये सोचना है, अभी हमारे विचार करना है, हमको निराय करना है कहाँ हो सकता है। उन्होंने तो बता दिया, अपने को उत्तर तो मिल गया है, मिल गया तो शादी कैसे हो सकता है उसमें। तो ऐसे शादी ने बंधन नहीं हो रहा था, फिर हो रहा, ये कब होगा? ग्यारहवें गुणस्थान में इनका बंधन नहीं था, दसवें में आगे शुरू हो जाएगा। तो ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा गठित होगा। अब तीसरा ध्रुव, जो ध्रुव जो है अवयव में, अभी कभी वो बंद मिटने वाला नहीं है तो उसको हम ध्रुव कहेंगे, और भव्य में वो भी बंद का अभाव करके मुक्त चले जाएंगे, उसको अध्रुव कहेंगे। ख्याल में कैसे सोचना है मूल प्रकृतियों के बारे में, वैसे उत्तर प्रकृतियों में तो आसान हो जाता है कभी कभी। अभी भी उत्तर प्रकृति के बारे में पूछूं, साता वेदनी का बंद कैसा होगा, शादी होगा कि अनादि होगा? अरे साता बंद है तो उसको शादी कहेंगे, और जब असाता का हो रहा है उसका बंधन मिल गया उसको अध्रुव कहेंगे, ध्रुव तो नहीं कहेंगे। अनादि का बंध होता रहे और कायम साता ही साता बांधता रहे, ऐसा कोई चीज नहीं है। ये शादी किसको कहना कि बंदर नहीं हो रहा था और शुरू हुआ, उसको कहेंगे शादी बंद। जैसे अभी हमने पहले मिथ्यात्व की बात अच्छी किया, मिथ्यात्व कब बन रहा था? तो अनादि से बन रहा था, तो एक सिंगल प्रकृति लेके हम बात करेंगे, तो उसका शादी बंद होगा क्या किसी को? हाँ होगा, किसको? समय तो छूट कर फिर मिथ्यात्व में आता है तो उसका शादी बंद चालू होगा, तो शादी भी और अनादि भी दोनों है, तो ध्रुव है कि नहीं है? अभव्य में ध्रुव होगा क्योंकि वो कभी समय को ही नहीं प्राप्त करेंगे, और भव्य में अध्रुव, जब समय दर्शन प्राप्त किया तो उसका बंधन छूट गया तो उसको अध्रुव कहेंगे। इस तरह से अलग अलग प्रकृतियों पर भी हम सोचेंगे। अब यहाँ पुस्तक में क्या लिखते हुए देख करके आगे बढ़ेंगे, किसको कहना शादी किसको अनादि कहना ये ख्याल में लेंगे, इसमें कोई बात रटने की है नहीं है, कॉमन सेंस से सब हम निकाल सकते हैं, सोचना थोड़ा तो उसका उत्तर मिल जाता है, नहीं तो क्या क्या याद करेंगे, है ना?
एक टाइप पर तो साता या असाता दोनों से एक ही बजेगी।
हाँ, एक ही बनती है।
तो फिर उस समय दूसरी प्रकृति नहीं बनती है उसके ही भेद वाली, तो उस अपेक्षा से शादी कह सकते हैं?
शादी ही कहेंगे उसको, क्योंकि पहले नहीं बन रही थी ना, जब यहाँ मूल प्रकृति ही है। यहाँ मैंने दो चार बार बताया था, वहाँ साता असाता का भेद मत करो, वेदनीय बन रही है कि नहीं, बस इतनी सोच।
तो साता असाता दोनों में शादी होगा?
हाँ, दोनों में शादी और अध्रुव होगा, दोनों का। जो जो प्रतिपक्ष वाली, अभी अपना विषय नहीं हुआ, प्रतिपक्ष वाली है जो दो में से कोई एक बनती है ना, साता या असाता, उच्च नीच गोत्र वगैरह वगैरह, उसमें ये तो शादी वाला बंद होगा। ख्याल में आती है बात, वो जिसकी बंधन ही विच्छित्ति होती तब तक उसको ध्रुव कहेंगे। अब ये बंधे विच्छित्ति क्या है उसकी चर्चा अभी करेंगे। अभी पहले शादी अनादि ध्रुव अध्रुव क्या है बस इसको समझना है। हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया, और भी एग्जाम्पल पुस्तक के आधार से देखेंगे। जब हम मूल प्रकृतियों की बात करते तो अलग से सोचना है, उत्तर प्रकृतियों की बात करते तो अलग से सोचना। उत्तर प्रकृतियों में भी अभी हमारा विषय आएगा, कुछ प्रकृतियां ऐसी कि जो ध्रुवबंदी होती है। ध्रुवबंदी का अर्थ क्या? अनादि से हर समय बंध रही है। ऐसी 47 प्रकृति बताएंगे ध्रुवबंदी। मालूम है आपको किसको याद है? ज्ञानावरण के पांच, दर्शनावन के 9, अंतराय के 5, ये 5 5 10 19 से ये हो गई। अब मिथ्या तो संबंधी है, एक मिथ्या को और ये 16 कषाय और वही 19, 19, 38 हो गई, और बाकी नाम कर्म की है जो अनादि से बनती है, तेजस शरीर, कारमा शरीर, अगुर लघु प्रधान, ये दो है और वर्णादि चार है, ये अनादि से बन रही है निर्माणी, इसको कहेंगे ध्रुव बंधी। जब तक उनकी बंध विच्छित नहीं होती, जब बंधना नहीं रुकता है, तब तक उनका बंध अनादि से चल रहा है। इसको ध्रुव है उसके बनता ही रहना, अनादि से तो बंधी आ रही है, परंतु भी मिथ्यात्व का ध्रुव बंध कब कहेंगे अभव्य जीवों को, वो कभी बंध रुका ही नहीं, उसको कहेंगे ध्रुव। अध्रुव है बंध रुक जाना, उसको कहेंगे अध्रुव हो गई, ये उसका डिफरेंस है। ध्रुवबंदी का अर्थ क्या होता है, प्रकृतियों में जब ध्रुवबंदी शब्द लगाते हैं, अपनी बंध विच्छित्ति तक निरंतर बनती रहती है, उसका अर्थ है ध्रुवबंदी। यहाँ अनंत नहीं
रखता,
ध्रुव का इन्हें हमेशा बनती है, उसको अनंत नहीं कहेंगे, बनती रहेगी, इस तरह से कहेंगे ध्रुव। देखो अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, पुस्तक में से पढ़ेंगे, ये भी हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के भेद देखे ना, उत्कृष्ट आदि के भी भेद देखे। यहाँ जो सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव है, ये किसके भेद है, उत्कृष्ट के भी, अनुत्कृष्ट के भी, जघन्य के भी और अजघन्य के भी, हर एक में ये भेद लगाने पड़ेंगे। यानी किसी का जघन्य स्थिति बंद होता है, वो सादि है क्या अनादि है, ध्रुव है क्या अध्रुव है, इस तरह से हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं कहती हूँ एक एक में बाद में, अभी हमने तो इन जनरल उसका अर्थ क्या है उसको देखा है। प्रकृति बंध में, प्रदेश बंध में, स्थिति बंध में, हम हर बार जब जब उसका विषय आएगा तब फिर इस चार्ट को लेकर फिर उसकी चर्चा करें। लास्ट टाइम हमने इस पर इतना नहीं लिया था, एक कर्मकांड के पहले बार शिविर हुए थे, दो शिविर हुए थे इन दोनों इन विषयों पर। आपने कहा नीलेश भाई ने कही उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट साधिया नादि कुछ नहीं समझता, तो इसके लिए ये चारों पर्व हम गठित करते जाएंगे बार बार, इसको वापस इस पर आ जाएंगे। अभी हम आते हैं 103 नंबर के पृष्ठ पर, वहां उत्कृष्ट आदि कर्मों में चार प्रकार है। कोई कर्म नहीं उत्कृष्ट, प्रकृति ने प्रदेश बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, उसमें उत्कृष्ट आदि जो चार भेद है, उन उत्कृष्ट आदि में एक एक के चार चार भेद बताए। अब ये उत्कृष्ट में भी ये और चार भेद होंगे, अनुत्कृष्ट में चार भेद लगाएंगे, जघन्य में और अजघन्य में चार चार भेद है, यही कहते हैं उत्कृष्ट आदि कर्मों में। यानी जो हमने पहले उत्कृष्ट वगैरह जो भेद बताए उनमें सब में चार प्रकार है, सादि बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। हमने अपनी भाषा में समझने की कोशिश की, अभी हम इसको इसके पुस्तक की भाषा में पढ़ेंगे। इसको अनादि से जिस विवक्षित बंध का कभी अभाव न हुआ, विवक्षित बंध का अर्थ यहाँ प्रकृति को नहीं लेना है, विवक्षित यानी उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट उसकी बात करना है। देखो हम आपको बताते हैं, वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कहाँ होता है, वेदनीय का जो साता वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कहाँ होगा, वो दसवें गुणस्थान। तो कहते अनादि से जिस विवक्षित बंध का कभी अभाव न हुआ, तो उसका अनुत्कृष्ट बंध कब है, कब से उत्कृष्ट कब होगा, दसवें के अंत में, अनुत्कृष्ट कब का है, अनादि का है, वो जगह में है कि उसकी चिंता नहीं करो, उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट कब होने वाला है, दसवें के अंत में, अनुत्कृष्ट कब का है, अनादि का है, समझ में आई ना बात। तो कहते हैं अनादि से जिस विवक्षित बंध का, यहाँ वेदनीय के लिए हम विवक्षित कौन सा कह रहे हैं, अनुत्कृष्ट, वो हमारा विवक्षित है, तो अनादि से उस अनुत्कृष्ट का कभी अभाव नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ ने कभी उत्कृष्ट नहीं हुआ, उत्कृष्ट कब होने वाला है, दसवें गुणस्थान में। वेदनीय का उत्कृष्ट हम अनुभाग की चर्चा कर रहे हैं, वो कब होगा, दसवें गुणस्थान में, तो उसका कभी अभाव नहीं हुआ, वह तो अनादि बन जाए। यानी वेदनीय में अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद कब से होगा? अनादि से होगा। निरंतर बंद हुआ करे वह ध्रुव बंद है। अभी जो कोई श्रेणी चढ़ाई नहीं या अभव है तो उसका वो अनुत्कृष्ट बंद कब तक चलेगा? वेदनी का वही चलेगा ना, ध्रुव रूप से चलेगा। अंतर सहित बंद हो वह ध्रुव बंद है, यानी कभी बंदे कभी नहीं बंदे, कभी बंदे कभी नहीं बंदे, उसको अध्रुव बंद कहेंगे। इस तरह के बंध नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में जानना योग्य है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? ये जो अभी हमने चर्चा की कुछ कर्मों पर करते और इन जनरल बात की गुणस्थानों की अपेक्षा, मार्गणाओं की अपेक्षा उसमें और डिटेल्स होगी, क्योंकि कौन से मार्गणा वाला कौन सा कर्म बांधता है, वो उसके कब उत्कृष्ट बांधता है, उसमें कितने गुणस्थान होते हैं, बहुत सारी एट ए टाइम बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। इसके लिए जो जीव कांड का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि उसमें हमने सारे 20 प्ररूपणाएं बहुत बार देखी थी ना, ये गुणस्थान क्या है, मार्गणा स्थान क्या है, उसकी क्या विशेषता है, हमने एक दूसरे में अप्लाई भी करके देखा था। कोई विशिष्ट वेश्या वाला है तो उसमें गुणस्थान कौन से होते हैं, उसमें कितनी पर्याप्ति होती है, उसमें कितने प्राण होते हैं, वो सारे हमने एक दूसरे में अप्लाई करके देखा था। वो सभी बात देखो, हम सोचते इसमें बुद्धि लगाते जरूर समझ में आती है, कभी कभी क्या है कि समझने में या अभ्यास नहीं है तो उसको लगता है क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। अभी एक बहन ने आके पूछा कि इतने सब फास्ट जाते हो क्या आप सिखाने समय? तो शिविरों में हाँ भले हम फास्ट जाते हैं, परंतु रोज के स्वाध्याय में हमने ये ग्रंथ सिखा है और उसके एक एक लाइन पर कही गई तो पूरे एक घंटे में चार लाइन ही पढ़ा पाते, इतने विस्तार से इसको हमने पढ़ाया भी है। यानी सामने पुस्तक रखो और बस सीढ़ी लगाओ तो आपको बिल्कुल कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा सॉल्व। और हमारे यहाँ जितने लोग बैठते हैं जब तक हरेक नहीं समझता हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हरेक की बुद्धि एक जैसी नहीं है ना, हमको तो साथ में लेकर साध्य करना है। शिविरों में क्या है, हमको पूरा ग्रंथ उसके मुख्य बिंदुओं पर ज्यादा लाइन प्रकाश करना है, तो उसमें हम उसको लेकर चलते हैं। कहीं कहीं तो बीच बीच में प्रकरण को ही छोड़ भी देंगे। अब यहाँ पर भी मुख्यतः से गुणस्थानों की बातें करेंगे, एक एक मार्गणा की डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मार्गणाओं का जो स्वरूप है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एक इंद्रियों में बात करेंगे वो कौन से कर्म बांध सकते हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। जैसे एक इंद्रिय जीव देवगति नरगति का बंध ही नहीं करेंगे, देवायुंद्र का बांधेंगे ही नहीं, वैकुंठ शरीर अंगों का बंध ही नहीं करेंगे। इस तरह उनकी जो विशेषता है उस मार्गणा की, प्रत्येक मार्गणा की अपनी विशेषता है। जैसे नारकी जीव है एक इंद्रिय द्वितीय तृतीय चतुर्थ जाति बांधते ही नहीं है, मरकर उसमें उत्पन्न भी नहीं होते, वो पंचेंद्रिय का ही बंध करेंगे। देव है वो एक इंद्रिय में जा सकते हैं, वो एक इंद्रिय जाति का बंध करेंगे या पंचेंद्रिय का करेंगे, वो भी कौन से देव करते हैं, ऊपर के करते हैं कि नीचे के, वो सभी विशेषताओं को हमको मालूम होना चाहिए, तब वो मार्गणा में भी और गुणस्थानों में भी हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। अभी तो हम केवल इतना ही देख रहे हैं, सादि क्या है, अनादि क्या है, ध्रुव क्या है, अध्रुव क्या है। आगे बढ़ते देखो, गुण प्रतिपन्नेश यानी मिथ्या दृष्टि साधनादि ऊपर ऊपर गुणस्थानवर्ती जीवों में जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध पाया जाता है, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध सादि अनादि ध्रुव ध्रुव वेद से चार प्रकार का होता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, गुणस्थान प्रतिपन्न ने ऊपर के गुणस्थान, यानी मिथ्या तो गुणस्थान छोड़कर जो ऊपर के गुणस्थान है उनको कहते हैं गुणस्थान प्रतिपन्न जीव। तो वहां जिन अभी हमने वेदनी की बात की थी, उसके अनुभाग की बात की थी, दसवें में जो उत्कृष्ट बनता है उसका अनुभाग वहां उत्कृष्ट बनता है, तो उसका अनुत्कृष्ट जो उसका अनुत्कृष्ट का क्या क्या होगा, उसका अनुत्कृष्ट अनादि का है, सादि का होगा कि नहीं होगा, अनुभाग बंध सादि होगा कि नहीं होगा, प्रकृति बंध तो अनादि की है, परंतु अनुभाग बंध हुआ ना, दसवें में रुक गया, ग्यारहवें में नहीं गया, ग्यारहवें में अनुभाग बंध नहीं हुआ, फिर दशम में आया अनुभव बंधन शुरू हुआ, उसको साथी करते हैं। सोचना किस तरह से वो बात है, हम एक एक प्रकृतियों की अलग अलग बातें और एग्जाम्पल आपको बताए। अभी उसके लिए उन्होंने इसका उदाहरण कुछ बताते हैं, हम उनके उदाहरण देखेंगे नीचे के पैराग्राफ में, उसका उदाहरण देखेंगे। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला, उपशम श्रेणी ने 8, 9, 10 और 11 गुणस्थान, जीव सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती हुआ, 10वें गुणस्थान वर्ती हुआ, वहां उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके, हमने सातावेदनी की बात की थी या उच्च गोत्र की थी, पश्चात उपशांत गशायन गुणस्थान वर्ती हुआ, वहां से उत्तर कर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती हुआ, वहां उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद किया। उत्कृष्ट क्यों नहीं किया? हाँ, उतरने वाले के चढ़ने वाले की भी शुद्धि ज्यादा थी, यहाँ उसका उत्कृष्ट नहीं हो सकता, अनुत्कृष्ट हुआ। हाँ, विशुद्धि कम हो गई। वहां उच्च गोत्र के
चढ़ने वाले के दोनों गुणस्थान कॉमन होते हुए भी फिर विशुद्धि में फर्क है,
विशुद्धि में फर्क है
ऊपर चढ़ने, क्योंकि 10 कॉमन है,
10 कॉमन है, परंतु चढ़ने वाला 10वां अनंत गुणा विशुद्धि होता हुआ चढ़ता है, और उतरने वाले के उसी पोजीशन में अगर हम स्थिति बंध की भी बात करेंगे तो 2 गुना होता है। सूक्ष्म सांप्राय नाम उपशमक का भी है, क्षपक का भी है। अभी हम स्थिति बंध की अपेक्षा समझाते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि अनुभाग बंद समझने में थोड़ा समय लगता है, कठिन लगेगा। अब जो क्षपक श्रेणी जो चल रहा है, अभी यहाँ किसके उच्च गोत्र की बात की ना, उच्च गोत्र का स्थिति बंद क्षपक श्रेणी में अंत में कितना है, 10वें के अंत में 8 मुहूर्त, 8 मुहूर्त, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले का 16 मुहूर्त है, उपशम श्रेणी उतरने वाला 10वें की स्टार्टिंग में 32 मुहूर्त है। क्षपक श्रेणी से उपशम श्रेणी वाले की विशुद्धि कम है और उससे उतरने वाले की विशुद्धि कम है, विशुद्धि कम है तो स्थिति बंद ज्यादा बुरा है। एक और एग्जाम्पल बताए, जैसे वेदनीय का वहां स्थिति बंद 12 मुहूर्त का है, क्षपक के उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के 10वें के अंत में 24 मुहूर्त का होगा, उतरने वाले के 48 मुहूर्त होगा, उसकी विशुद्धि अलग है, नाम वही है, गुणस्थान वही 10वां है, परंतु चढ़ने में और उतरने में बहुत कुछ अंतर हो जाते हैं। तो देखो, वहां से उतर कर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती हुआ, वहां उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद किया, वहां उच्च गोत्र के इस अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद को सादी कहते हैं। पहले क्या हो रहा था, अनादित्य हो रहा था ना, अनुत्कृष्ट था, उत्कृष्ट कब होगा, जब 10वें में गया तब उसका उत्कृष्ट हुआ था, क्योंकि उच्च गोत्र के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का अभाव होकर पुनश्च सद्भाव हुआ, इसलिए इसे सादी कहते हैं। माध्यम बाद में जो वो चलेगा ही नहीं है, वो अनुत्कृष्ट बंध तो अनादि से था, अब अभवी जीव में क्या कहेंगे, वो अनुत्कृष्ट ही है, कायम अनुत्कृष्ट ही रहेगा, उसका उत्कृष्ट कभी नहीं होने वाला। और उपशम
जब वो शादी हुआ उसका, तो वो ध्रुव भी माना जाएगा ना, तब या अध्रुव हो जाएगा,
शादी हुआ तो अध्रुव हो जाएगा उसको, ध्रुव किसमें होगा, अनुत्कृष्ट का ध्रुव लेना है, प्रकृति का उत्कृष्ट ध्रुव नहीं लेना है, अनुत्कृष्ट पड़े वो शादी हुआ उसको, अनादि तो था ही, अब चढ़ के उतरा तो शादी भी हो गया। उसमें ध्रुव भी लगेगा, अभी इसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, ये सारी अनादि की, क्योंकि ये सारे शब्द हमारे लिए नए हैं, और फिर हमको थोड़ा इमेजिन करना है कौन से गुणस्थान में क्या क्या होता है। बोलो 2400 भगवान।